ये लो अपना तोहफा, उठा।
अरे रफी साहब
उठा।
अरे ना करें, ऐसा ना करें,
उठा।
खुदा के लिए ऐसा ना करें, मेरे पर सितम ना करें, जितना मानो मुझे मार दे मगर ऐसा ना करें, मेरे साथ खुदा के लिए मुझे छोड़ दें।
मेरे पैर छोड़ो,
मोहलत दे मुझे इस घर में रहने की, छोड़ दिए मुझे। मैं आपसे वादा करता हूँ कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे
मेरे हाथ छोड़ो,
छोड़ दिए मुझे,
मेरा हाथ छोड़ो,
ना मारिए मुझे,
मेरा हाथ छोड़ो।
क्या कर रहे हो? भेजी पकड़ो उसे। दरवाजा खोल घटिया आदमी, दरवाजा खोल।
भाई किस,
मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ, अगर मर्द दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो।
अपने चचा को यहाँ से ले जाओ, इस जगह गंदखाना बना रखा है।
पहले तेरा जनाजा लेके जाऊंगा, उसके बाद उनको ले जाऊंगा यहाँ से।
अभी दिखाता हूँ।
तू कब बाहर आओगे? बाहर तो आओगे ना? मैं अभी बताता हूँ, बाहर आओ, अगर हिम्मत है तो बाहर आओ, अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। मैं बताता हूँ,
मैं रफी हूँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। हाँ हाँ, जल्दी आ जाओ,
बाहर आओ घटिया आदमी। मैं सबक सिखाता हूँ तुझे, तेरा जनाजा लेके जाऊंगा घटिया इंसान।
हिम्मत हो तो एक मिनट और रुको,
रुके रहो। तुम्हें मार रहा था,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
दरवाजा खोल घटिया आदमी।
तुम्हारा ये हश्र किसने किया है?
मैं ठीक हूँ, फिक्र नहीं करो जना, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तय नहीं था कि मेरी जगह किसी को नहीं दिखाओगे? हमने तय किया था जनाब।
दरवाजा खोल, दरवाजा खोल।
क्या खड़े हो सकते हो?
हाँ,
मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ध्यान से मुझसे टेक लगा लो।
अब आप जाइए, मुझे यहाँ इससे भी निपटना है।
कोई जरूरत नहीं है रुकने की,
ये बड़ा टेढ़ा आदमी है, खुदा ना खासा तुम्हें मार के नाकारा बना देगा।
मैं इसकी जान लेके रहूं।
उठो चलते हैं, तुम्हारे चाचा को पहले क्लिनिक ले चलते हैं, फिर उसके बाद थाने जाएंगे इसकी रिपोर्ट करने।
नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, कसम से बिल्कुल ठीक हूँ, मैं क्लिनिक नहीं जाऊंगा।
ठीक है, क्लिनिक नहीं ले जाएंगे, अपना हाथ मेरे कंधे पर रखो, चलते हैं।
अरे कहाँ चले, मुझे अपना सामान तो समेटते दो।
हमीद, खुदा के लिए चलो, चलते हैं।
क्या हंगामा खड़ा किया है? तुम्हें लगता है यहाँ तुम्हें जवाब देने वाला कोई नहीं है? ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगे। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ इस हमले से, दफा हो जाओ। यहाँ नहीं रुकना फिर।
मैं जान भी करूँगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जान लेकर
दफा हो जाओ तुम,
मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
अब गोंट दूंगा तुम्हारा,
मैं जान लेकर आऊंगा।
आप
ठीक है? अब
ठीक तो हो ना तुम लोग?
आप ठीक है? जी जी,
ठीक हो बिल्कुल। डॉक्टर को फोन कर दो। चारों का सामान सारा तोड़ दिया।
क्या
हशर कर
दिया वैसे चाचा? अब आप ठीक है ना चाचा?
उधर से भी उठाओ,
उधर आइए।
हाजी साहब, आपका बेटा जवान है, गलती कर बैठा। आपने क्यों ऐसी गलती की?
हमने पहल नहीं की इंस्पेक्टर साहब।
मेरी गलती है, जब उसने देखा कि मुझे मार रहे हैं तो खुद पर काबू न रख सका। इंस्पेक्टर साहब,
रिश्तेदार हो?
जी इंस्पेक्टर साहब, मेरे चचा हैं।
हाजी साहब, जो खुदा का शुक्र अदा करो कि हमसाया मदद को पहुंचे। یہ بڑے ٹیڑھے آدمی ہیں، مفت میں مار مار کے قتل کر دیتے۔
میں نے بھی ان سے یہی کہا، ایسے لوگوں سے بھیڑنا نہیں چاہیے۔
ابو آپ ٹھیک ہیں نا؟
دونوں کو پہچان لیا گیا ہے، ان کے ٹھکانے بھی معلوم ہیں، رات ہونے سے پہلے پہلے ہم ان کو گرفتار کر لیں گے۔
انسپکٹر صاحب، جس نے دونوں کی اطلاع دی تھی اس کا گھر بھی وہی ہے۔
سچ کہہ رہا ہے، میرا مالک مکان ہے، ضرور اسی نے بلایا ہوگا۔
ہاں ہمسائے نے ان کی رپورٹ کرائی ہے، ان کی گرفتاری کا وارنٹ بھی لے جا چکے ہیں۔
میں نے اسے کچھ نہیں کیا، اچانک صبح سویرے پاگل سا ہو گیا اور میرا سارا سامان باہر پھینک دیا، سب کچھ توڑ دیا۔ میں نے جتنا کہا کہ ارے میرے پاس سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن اسے نہیں سنا۔
آپ بھی چاہیں تو رپورٹ لے کر آ سکتے ہیں۔
ہاں چاچا جی،
مجھے اپنی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں لکھوانی، اس کی طرف سے لکھوانی ہے، میری خاطر اس کو مار رہے تھے۔
میرے بھائی اس ملک میں قانون رائج ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی آئے اپنی مرضی سے جو چاہے کر کے چلا جائے۔ ہم کس لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟
سر انسپکٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔
آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، ہم ان کو گرفتار کرنے کے بعد آپ کو اطلاع دے دیں گے۔
بہت شکریہ احمد چچا، مجھے دے دیجیے،
شکریہ۔ اوف بیچارہ۔
آئیے ابو جا،
بیٹھو بیٹھو۔ احمد میاں مجھے ایک کپ چائے دے دیں۔
جی ضرور۔
کب سے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا ہے؟
نہیں معلوم، حساب ہاتھ سے نکل گیا ہے۔
تو ان کی حالت کا کچھ نہیں پتا ہے؟ تم نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی اور بچی سے مل چکے ہو؟ زبردستی سوسن سے شادی کی تھی
ابو جان؟
اس سے شادی کرنے کے لیے زمین و آسمان ایک کر دیا تھا، کیونکہ سوسن بھی طلاق یافتہ کی لڑکی تھی، ایک لاوبالی باپ اور بے قسمہ کی بچی، اسی لیے شادی سے ڈرتی تھی۔ کہتی تھی کہ میں نہیں چاہتی کہ کل کو میرے بچے بھی میری طرح بے یار و مددگار رہیں۔ تمہیں یاد ہے؟ یہ اتنی دفعہ گیا کہ آخر کار اسے مجبور کر دیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہی چیز جس سے ڈر رہی تھی، ایک معصوم بچی جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔
میں خود ان سے الگ ہو گیا تاکہ ان کی شرمندگی کا سبب نہ بنوں۔
کہاں؟
ہاں
ان کو کہاں چھوڑا؟ کیا ان کو ایک اچھا گھر دیا تب ان سے الگ ہو گئے تاکہ وہ آرام سے زندگی گزار سکے؟ اسے بتاؤ کہ اس کی بیوی اور بچی کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، بتاؤ تاکہ سمجھ جائے کہ ان پر کیسی مصیبت نازل ہوئی ہے۔
ابو جان میں صدقے جاؤں، آخر ان باتوں کیا
چھوڑو مجھے، سچ کہہ رہا ہوں نا، اب کیا فائدہ؟ حمید صاحب تو زندگی گزار رہے ہیں، بیوی بیٹی ماں باپ بہن بھائی سب جائیں بھاڑ میں، ہاں میں بھی اتنا ہی قصوروار ہوں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ انہیں ڈھونڈنے نہیں نکلا تاکہ دیکھ سکوں کہ کس حال میں۔ کیونکہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو کسی پوش علاقے میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم سے ملنا جلنا نہیں چاہتے، لیکن اس بات سے غافل تھا کہ وہ تو خدا کے بندے۔
ابو جان خدا کے لیے بس بھی کریں، بہت ہو گیا۔
میں اسی حالت کا مستحق ہوں، میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ خوش قسمت تو تم ہو लगता है इस फैमिली में अकेला मर्द तुम ही हो।
अबूजान, अबू।
मेहदी साहब, बेला सौसन के हालात कैसे जा रहे हैं?
चाचा माफ कीजिए, अबू की तबीयत ठीक नहीं है। अबू, अबू मैं कुर्बान जाऊं, एक मिनट रुकिए। ये कहाँ जा रहे हैं आप? अरे रुकिए तो सही, एक मिनट बैठ जाइए, इस हालत में देखेंगे लोग तो क्या कहेंगे। बैठिए तो सही अबू जान, बैठ जाइए, मैं आप पे कुर्बान जाऊं, बैठिए।
वो जो इस हालत में ऊपर बैठा है, जानते हो कौन है? जानते हो कौन है? ये वही है कि किसी में जुरत नहीं थी कि उसे कहे यहां से उठो। ये वही है कि अगर किसी को जमीन पर गिरता हुआ देखता था तो उसका हाथ पकड़कर उसे उठा लेता था।
आप फिक्र ना कीजिए अबूजान, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ये वही है कि लोग अपना हक दिलवाने के लिए उसके पास आते थे। ये वही शख्स है कि जब जूतों के बाजार में होता था तो कोई किसी पर जुल्म नहीं करता था। ये वही आदमी है, वही है। लेकिन देख रहे हो उसकी क्या हालत हो गई है? देखा
जी अबूजान, अब मैं सदके जाऊं वहां पे, लेकिन अब इन बातों क्या फायदा, सिवाय इसके कि आपकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी।
तो क्या बात भी ना करूं, कुछ ना कहूं, या ये कहूं कि मेरे भाई बहुत अच्छा हुआ जो आपको इस हाल में देखा, खुश हूं जो आपसे इस हालत में मुलाकात हुई।
मैं अपने अब्बू पे कुर्बान जाऊं, मैं वादा करता हूं कि सब ठीक हो जाएगा, हमें बस एक दूसरे का साथ देना होगा। अबूजान, चाचा हमीद को जल्द से जल्द इस हालत से बाहर हमें निकालना है। कसम से हमारे पास टाइम नहीं है, दादा जान की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है।
उसे इस हालत में अपने दादा जान से नहीं मिलवाना, अगर तुम्हारे दादा ने इसे इस हालत में देखा तो मर जाएंगे।
अबू जान फिलहाल तो किसी को बताना ही नहीं है कि चचा हमीद हमारे पास है। माफ कीजिएगा, माजरा चाहता हूं। जी जनाब, सलाम अलैकुम। जी जी जी, आप ठीक हैं? कब? आप टाइम तय कर लीजिए, मेरा पैसा तैयार है। लेकिन ठीक है ठीक, मैं आ जाऊँ। खुदा हाफिज। अबूजान देखिए, अल्लाह कितना मेहरबान है हम पर। जिस घर को हमने देखा उसके मालिक ने फ़ोन करके कहा कि वहाँ काम करने पर उसे कोई इतराज़ नहीं है। देखिए किस तरह सारे काम हल हो रहे हैं। मैं आप पे कुर्बान जाऊँ, आप भी बुजुर्गी दिखाइए, आइए अंदर चलते हैं, और हमें चचा को भी ताने ना दीजिए, कसम से कोई फायदा नहीं।
तुम अंदर जाओ बेटा, मैं उसको इस हालत में नहीं देख सकता।
मैं कुर्बान चाहूँ आप पे, मैं आपके बगैर तो जा नहीं सकता कहीं। अबूजान खुदा की कसम, बहुत से अफराद इस रास्ते से जिस पर हमें चचा चल रहे हैं आसानी से वापस आ चुके हैं और अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। अब मैं आप पे कुर्बान जाऊँ।
नहीं पूछा कि कब से नशा कर रहा है?
कोई फायदा नहीं, क्या फर्क पड़ता है?
सही कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
चलिए अंदर, कसम से इस वक्त हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, खुदा ने हमारी आंखें खोल दी। हमीद चचा हमारे पास हैं और जानते हैं कि उनकी बीवी बच्चे कहाँ हैं। चलिए अंदर।
या अल्लाह,
अहमद मियां इसको यहां ले आओ।
हामिद साहब, यह आपका बिस्तर है, कोई और चीज की जरूरत हो तो बताइएगा।
बहुत शुक्रिया आपका।
कोई बात नहीं।
अहमद मियां एक मिनट जरा रुकिए। इस्मत बेगम को तो नहीं पता चला कि बिस्तर किसके लिए ले जा रहे हो?
नहीं, पूछा तो था, लेकिन मैंने कहा एक पुराने दोस्त के लिए ले जा रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोला हूँ।
मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो आपकी बेगम अम्मी जान को देखें और उन्हें बताएं।
आप बेफिक्र हैं मोहसिन साहब, मैं ध्यान दूंगा।
सलाम अलैकुम।
सलाम
वालेकुम सलाम बेटा। अपने चचा के लिए भी ले आए?
जी अबू, चचा जान आपके लिए कबाब लेके आया हूँ।
बहुत शुक्रिया बेटा।
लीजिए अबू जान, ये लीजिए, ये आपके लिए।
ये क्या है?
शर्ट
है। जानता हूँ, लेकिन किस लिए?
अगर इस हुलिये में आप घर गए और अम्मी जान ने देख लिया तो खुदा न खासा उनको तो अटैक आ जाएगा।
अम्मी को इसे देख कर अटैक नहीं होगा, इसको देख के अटैक होगा।
बहरहाल हुलिया तो ठीक रहना चाहिए ना, ये मैंने अपने लिए ली है, ठीक है ना?
मुबारक हो, बहुत शुक्रिया।
चचा जान, आपके लिए मैंने लस्सी और खजूर भी लिए है, और अहमद चचा से कह दिया कि आपको चाय दे दें, और अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे फ़ोन कीजिए।
ठीक ठीक।
और ये बीज भी लिए हैं आपके लिए।
अब तो बीज खाने की आदत भी ख़त्म हो गई है बेटा।
ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं दोबारा आदत डाल दूंगा। अबू दीजिए, मैं सुइयां उसकी निकाल देता हूँ।
मैं खुद ही निकाल लेता हूँ।
अहमद चचा, बाद में मौका मिला तो यहाँ एक झाड़ू लगा दीजिएगा, सुइयां गिरी हुई हैं, खुदा न खासा चचा के पाँव में घुस जाएँ, ख़तरनाक है।
जी अभी उठा लेता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया।
लीजिए मोहसिन साहब, चाय पीजिए, थकावट दूर हो जाएगी।
खुदा सलामत रखे तुम्हें।
मेरा घर यहाँ से करीब है, कोई काम हो तो फौरन फोन कर लीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा।
ठीक है।
अच्छा उन्हें चाबी दे दो।
अपनी चाबी?
चाबी के बगैर तो बाहर नहीं जा सकते, अंदर भी नहीं आ सकते, बाहर फंस जाएंगे। कोई कैदी तो नहीं है? कोई काम हो तो हम में से किसी को फोन करना। चलें बेटा।
मुझे तो कुछ काम नहीं है, चलिए।
मैं जाके कपड़े बदलता हूँ।
ठीक है।
अहमद मियाँ, आप भी थक गए हैं, घर जाके आराम करिए।
कैसी थकावट साहब, सारे काम तो आप लोगों ने किए हैं, मैं यहाँ साफ सफाई करके चला जाऊंगा।
बहुत शुक्रिया।
खुदा
हाफिज़। लीजिए चचा जान। अहमद चचा, आपके लिए नमक और चमचे कांटे सब ले आए।
जी।
ये खजूरें भी ले लीजिए आप।
खुदा सलामत रखे बेटा।
चचा जान, ये आपके लिए कुछ साफ सुथरे कपड़े हैं, दिल चाहे तो तब्दील कर लीजिएगा।
ठीक ठीक।
लाई मदद करता हूँ आपकी।
बहुत शुक्रिया।
नहीं कोई बात नहीं
बेटा, उसे चाबी देके सही क्या या गलत?
अबू जान बिल्कुल अच्छा किया आपने, शुक्रिया आपको ध्यान रहा। और हाँ, आप घर जाइए, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, घर जाता हूँ, परस्तू को भी साथ लाता हूँ।
ठीक है, उसे क्या बताओगे क्या हुआ है?
परस्तू को तमाम हालात का इल्म है, चचा हमीद का किस्सा जानती है।
अच्छा, अम्मी जान लोगों से क्या कहोगे? अगर उन्होंने इस तरह तुम्हें देखा तो बदहवास हो जाएंगे।
ठीक, हाँ उन्हें कह दूंगा कि सड़क पे किसी का झगड़ा हो रहा था, एक आदमी मार खा रहा था, मैं उसकी मदद के लिए गया और मुझे भी कुछ लग गई, इसलिए हालत हो गई मेरी, मैं ये कह दूंगा ना। अबू जान।
हाँ बेटा।
मैं कुर्बान जाऊँ, आपने वादा किया कि इसके बाद ज़्यादा नहीं सोचेंगे, कसम से इस तरह से कुछ नहीं ठीक होगा। अल्लाह पर तक्वाकुल कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम चचा इस हालत से बाहर आ जाएंगे और दोबारा वही पुराने वाले दिन वापस आ जाएंगे, खुशी के दिन।
ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, जल्दी आना।
ठीक है।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
टीवी चला दूं आपके लिए अबू जान?
बीता कहाँ है बेटा?
अपने कमरे में।
अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रही? उससे कहो कि हमारे पास आके बैठे।
जी अबू।
ये लीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया।
बहार ने अल्ट्रासाउंड करवाया है, पता चला है कि बच्चे जुड़वा हैं।
अच्छा फिर?
हाँ और क्या कहूँ, मेरी बेटी ने खामोशी से शादी कर ली है और कल परसों से तीन तीन बच्चे पालेगी वो बेचारी।
है कोई बात नहीं, हम भी उसकी मदद करेंगे, तो खुशी की खबर है।
अगर इन लोगों की भी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि आप इतना ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, इनकी भी शादी करवा के भेज दीजिए। अगर टाइम गुजर गया तो ये शादी नहीं करेंगी, मैं बता रही हूँ आपको।
इंसान हर एरे गेरे को तो बेटी नहीं दे सकता। बहार का शौहर बहुत अच्छा इंसान है, मुश्तबा बुरा आदमी नहीं है।
गुलाम रजा भी बुरा नहीं था।
अब इस गुलाम रजा की याद कैसे आई?
अरे आपका भांजा है, जब भी उसे देखती हूँ तो उसकी तरफ से रिश्ता मांगता है, वो याद आ जाता है मुझे।
नहीं, गुलाम रजा का बीता के साथ कोई जोड़ नहीं था।
क्यों नहीं था? उसने जाके बीता से बेहतर लड़की से शादी की और बहुत खुश भी है।
कभी बीता के सामने ये बातें ना करना।
अहम बात यह कि बीता को भी वो पसंद था।
लेकिन उसने कभी मुझसे ये बात नहीं की।
मैंने तो आपको बताया था ना, उसका बताना जरूरी है क्या? शायद उसको शर्म आती थी।
अगर उससे चाहती थी तो क्यों कह रही थी कि मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ?
इन दोनों बातों का क्या ताल्लुक है? गुलाम रजा की बीवी शादी के बाद यूनिवर्सिटी नहीं गई, जब उसके बच्चे हो गए तब उसने छोड़ दिया यूनिवर्सिटी। शायद हमारी जिद की वजह से बीता ये सब काम कर रही है अपने साथ।
आखिर किस लिए?
मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे उसके दिल के बारे में क्या पता है।
तो क्या जिसकी भी शादी नहीं होती वो जाके खुद को इंटरनेट और रिश्तेदारों में मजहके खास आम बनाए ताकि सारे लोग उस पर हंसते रहें?
नहीं, साफ जाहिर है कि ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर शादी हो गई होती तो ऐसा काम नहीं करती।
नहीं बेगम, आओ मैं तुम्हें दसियों ऐसी औरतें जो ऑफिस में काम करती हैं दिखा सकता हूँ, सब शादी शुदा हैं लेकिन अपनी तमाम तनख्वाही इन्हीं कामों पर लगाती हैं।
हजारों औरतों में शायद दो या तीन औरतें ऐसी होंगी जो शोहर और बच्चे के बावजूद ऐसे काम करें। पुराने जमाने में लड़की लड़के जल्दी शादी कर देते थे, उनके बच्चे होते थे और बच्चों के डर की वजह से वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते थे ताकि उनके बच्चों के ऊपर कोई गलत नजर ना आए।
पुराने जमाने में ये चीजें, ये गंद नहीं होता था।
क्यों नहीं होता था? हर जमाने में उस जमाने के मुताबिक चीजें होती हैं जो इंसान को भटका सकती हैं। मैं बता रही हूँ आपको, अगर इनकी शादियां नहीं हुई तो कल ये सारा कसूर हमारी गर्दन पर डाल देंगी। आपको सरदारी साहब की बेटी याद होगी ना, उसने अपने माँ के फाते में क्या कहा था, मैंने उसी वक्त आपको बताया तो था।
अरे मुझे उस वक्त की बात कहाँ से याद है।
उसने सब लोगों के सामने कहा कि मेरी अम्मी ने मुझे शादी नहीं करने दिया, खुद मर गई और मैं तन्हा रह गई।
ये तो बिल्कुल फजूल बात थी, अब जाके शादी करें ना।
50 साल की उम्र में?
क्यों नहीं, इंसान हर उम्र में चाहे तो शादी कर सकता है।
हाँ शायद शादी कर सके, लेकिन बच्चे तो नहीं ला सकती ना यूसुफ साहब। शादी और बच्चे लाने की एक उम्र होती है, हर चीज की एक उम्र होती है।
इनके लिए अभी देर नहीं हुई है।
बीता ने आज जब सुना कि बहार के ट्विन्स हैं तो उसने नाजरीन से कहा कि कितनी खुशकिस्मत है, अगर उसे बच्चे पसंद नहीं होते तो वो क्यों ऐसा कहती।
मैंने इसलिए गुलाम रजा को नहीं में जवाब दिया कि बीता नाजरीन से छोटी है, मुनासिब नहीं है कि पहले छोटी की शादी हो जाए।
कौन कहता है ये बुरी बात है, ये बातें अब पुरानी बातें हो गई हैं। आप अभी भी गलती कर रहे हैं इस लड़की का रिश्ता ठुकरा कर।
किस लड़के की बात कर रही हो?
अरे उसी फरहमंद का बेटा जो नाजरीन को चाहता है, मैंने उसे देखा है, बुरा लड़का नहीं है।
मैंने कब कहा है कि बुरा है? मैं कहता हूँ कि वो खुद भी नहीं जानता कि क्या कर रहा है।
मुखालफत करेंगे तो कल को ये भी बीता की तरह हो जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चंद दिन पहले कह रहे थे कि अगर इसके साथ शादी नहीं किया तो किसी के और के साथ भी शादी नहीं करेगी।
बकवास करती है।
आप अपनी बात पर डटे रहें, उसने अपने दिल की बात कही, आप जबरदस्ती अपनी मर्जी उसके पर थोप नहीं सकते हैं। नाजरीन भी शादी करना चाहती है, बाहर से कहा है कि अगर उसका शौहर माली हालात अच्छे हों तो वो काम भी नहीं करना चाहती है। देखिए अगर ये लड़की भी अपनी शक्ल और सूरत बदलने पे पहुंच गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, फिर घर से बाहर थोड़ी निकाल सकते हैं इन्हें।
क्या मुसीबत आ गई है मेरे खुदा।
देखिए बच्चों का होना जितना ज्यादा लज्जत बख्श होता है उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और साथ में सख्तियां भी लेके आता है। बच्चों को गलत रास्ते से रोकने के लिए दीन के अहकामात पर काम करना चाहिए और जल्द से जल्द उनकी शादी करना चाहिए, खासकर जब ऐसा रिश्ता हो जिसको वो खुद भी मानते हो। उम्र बढ़ गई तो फिर ये शादी नहीं करेंगी, मैं आपको बता रही हूँ, वो इन कामों में पड़ जाएंगी और अपने आप को ऐसे कामों में मसरूफ कर लेंगी। उस लड़के को आने दो, उनसे बात करेंगे और अपनी शरायत बता दो।
तो क्या मुझे उनको फोन करना होगा?
इसमें क्या बुराई है, उसने आकर बात तो की है ना।
अरे छोड़ो,
بے غیرت، جب موبائل آف ہی رکھنا ہے تو لاک نمبر کیوں دیتا ہو؟ جا کے کچھ کروں اپنے لیے.
حمید صاحب.
ہاں
السلام علیکم حمید صاحب.
وعلیکم السلام.
آپ ٹھیک ہیں؟ پچھلے سال سے جب سے ورک شاپ بند ہے یہ ریڈیو میری تنہائیوں کا ساتھی ہے، ٹی وی سے بہت بہتر ہے.
آپ کا بہت شکریہ.
چینل چینج کرنا کر لینا، ابھی تو پیام چینل چل رہا ہے، بہت اچھا ہے. مجھ سے کوئی اور کام ہو تو بتائیے.
نہیں جائیے آپ، ٹھیک ہے.
خدا حافظ.
خدا حافظ. احمد صاحب، مہدی.
نازی بیٹا آؤ، تمہارے ابو کو تم سے کام ہے.
مجھ سے؟
ہاں تم سے. تمہارے ابو فرحمان صاحب کو فون کرنا چاہتے ہیں، جاؤ دیکھو تم سے کیا کام ہے ان کو.
کیوں، کیا ہوا ہے؟
نہیں ڈرو بیٹا، کچھ فیصلہ تو کرنا ہے نا. آؤ بیٹا آؤ، دیکھتے ہیں.
جی ابو.
آؤ بیٹا، ایک منٹ یہاں بیٹھو، تم سے کام ہے.
جاؤ بیٹھو بیٹھو.
میں نے تمہاری ماں سے بات کی ہے، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فرحمان صاحب کو فون کریں تاکہ باقاعدہ طور پر اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ مانگنے آئے اور بات آگے بڑھائی جائے.
کس لیے؟
تو کیا بات کو آگے نہ بڑھایا جائے؟
نہیں نہیں، بات یہ ہے کہ فرحمان صاحب نے تو ابھی وہ کام انجام ہی نہیں دیے جو آپ نے کہے تھے.
جانتا ہوں، لگتا ہے مجھے بدلنا ہوگا. کبھی کبھی انسان بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے.
لیکن ابو جان، میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ آپ بدل جائیں. آپ یقین رکھیں کہ میں آپ کی مرضی کے خلاف کبھی بھی کوئی کام نہیں کروں گی.
अच्छा तो आखिरकार शादी करके अपने घर बसाना तो है ना, तो इससे अच्छी और क्या बात है, उसके साथ ज़िंदगी आगाज़ करो जिसको तुमने खुद इंतखाब किया है। ऐसे में हमारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी।
मैं इस बात से नहीं डरता कि मुझ पर कोई जिम्मेदारी आए। अगर तुम अब भी अपने फैसले पर कायम हो तो मैं हाजी मोहसिन को फ़ोन करके कह देता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ आए ताकि फैमिली की सतह पर बात की जाए।
लेकिन मुझे इस तरह से पसंद नहीं है।
क्या मतलब मुझे इस तरह पसंद नहीं है का क्या मतलब है?
ये कि अब्बू मजबूरी में आके कोई बात माने।
कैसी मजबूरी बेटा, फरहमन साहब एक दफ़ा आके बात कर चुके हैं, बेहतर उनकी फैमिली भी है ताकि हम एक दूसरे को मज़ीद पहचान सकें।
मुझे आपसे कुछ कहना है।
क्या कहना चाहती हो?
ये कि फरहमन साहब ने पढ़ाई छोड़ दी अपनी और आगे नहीं पढ़ना चाहते और बस छोड़ना चाहते।
अच्छा,
उस दफ़ा मैंने आपसे बताया नहीं था लेकिन कुछ दिन पहले वो यूनिवर्सिटी आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ।
तुम्हें खुद इस बात पर कोई एतराज़ तो नहीं है?
क्यों नहीं।
ओहो,
अरे इस बात का क्या मतलब बेटा, तो क्या अब वो तुम्हारी पसंद नहीं है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस मेजर में वो पढ़ाई कर रहे हैं वो उन्हें नहीं पसंद है और अगर उसको जारी भी रखें तो उनके काम ही नहीं आ सकता। आप क्या कहते हैं?
बच्चों की तरह बात नहीं करो, तुमको उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तुम्हारे बाप को नहीं।
हाँ जानती हूँ, लेकिन तय नहीं था ना कि वो पढ़ाई छोड़ देंगे और मैं ये भी जानती हूँ कि अब्बू इस चीज़ को अहमियत देते हैं।
देखो बेटा, उसका भाई भी यूनिवर्सिटी नहीं गया है, डिग्री नहीं ली है, लेकिन मर्दानगी के लिहाज से 100 डिग्री वालों का मुकाबला कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जाना मेरी नज़र में बहुत अहम है, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारी माँ की बात भी सही है, तुम्हें उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अगर ये बात तुम्हारे लिए अहम नहीं है तो मैं हाजी मोहसिन को फ़ोन करता हूँ कि बाकायदा तौर पर आ जाएं।
पता नहीं क्या कहूँ।
ये क्या मतलब हुआ?
उसने क्या कहा कि पढ़ना नहीं है तो क्या करना चाहता है?
एक काम शुरू करना चाहते हैं।
उसने उस दफ़ा भी बताया था कि कोई काम शुरू करना चाहता है।
वो ऑलरेडी शुरू भी कर चुके हैं।
अगर ख़ुद तुम्हारे लिए उसकी पढ़ाई छोड़ना कोई मसला ना हो तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है।
अबू जान, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इन दिनों में जो उस चीज़ें पेश आई हैं उनकी वजह से आप किसी मजबूरी में उनकी बात मान लें।
मोहसिन फरहमन का शुमार बाजार के बेमिसाल अफराद में होता है। अगर ये मेहरान थोड़ा सा भी अपने बाप पर गया हो तो तुम उस पर भरोसा कर सकती हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ अपने वालिद की बिल्कुल मदद नहीं करता।
नहीं, उसको ये काम पसंद ही नहीं है।
अरे हर इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक काम करना पसंद करता है, उसको मजबूर थोड़ी कर सकता है कि अपने बाप का काम करे।
क्या करूं, फोन करूं?
अच्छा, अगर आप तैयार हैं तो ठीक है।
मेरी रिजाइत ज्यादा अहम नहीं है, शादी एक नहायत अहम मसला है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कदम उठाओ कि उसमें फंस जाओ, क्योंकि बाद में पछतावे का कोई फायदा नहीं है।
अरे मैं पछताऊंगी नहीं।
वो फोन उठा के ले आओ।
जी अभी लाई।
अरे भाई, चचा जान कहाँ हैं?
वर्कशॉप को हवाले करने तक वो वहीं रहेंगे।
अबू जान, चचा को बहुत मारा क्या?
हमसे कम।
आइए, आपके जख्मों पे तो रख दूं।
जरूरत नहीं है अकरम बेगम, खुद को क्यों परेशान कर रही
है? बिला वजह है ये।
आपने अपना चेहरा नहीं देखा, जाइए आईने के सामने देखिए क्या हाल हो गया आपका।
समझ में नहीं आ रहा है कि आपको खो क्या गया है, किस लिए जाके उन गुंडों और लफंगों से भिड़ते हैं।
अम्मी जान, आप ये क्या कह रही है? क्या हमें पहले से मालूम था? क्या हम जानते थे कि वहाँ जाएंगे भिड़ जाएंगे, उनसे लड़ाई हो जाएगी?
तो आपको जानना चाहिए था ना मेहदी भाई, मेरे वीर, आपको जानना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर वो मार देते तो।
कम से कम ये तो खा लें। हाजी अब साहिबा से नहीं कहिएगा, उनको अगर हमीद के नशे की खबर मिल जाएगी ना तो वो वहीं पे मर जाएंगी।
मुझे इस बात का ख्याल है, अहमद से भी कह दिया है कि किसी को पता ना चले।
ये खाइए,
इसको चेहरे पर रखिए, सूजन कम हो जाएगी।
जरूरत नहीं है।
रखो ना चेहरे पर, सूजन कम हो जाएगी। अम्मी जान,
रख दो बच्चे, रख लो चेहरे पे, कोई बात नहीं है, जरा सूजन कम हो जाएगी इससे।
ठीक है, क्यों शोर मचा रहे?
जी फरमाइए।
हेलो,
سلام فرحمن صاحب.
وعلیکم السلام.
میں یوسف اصلی بول رہا ہوں.
سلام علیکم اصلی صاحب. فرمائیے میں سن رہا ہوں.
آپ ٹھیک ہیں؟
بہت شکریہ.
آپ کو زحمت دینے کی وجہ یہ ہے کہ ایک منٹ ہولڈ.
ان کو بتائیے کہ ان کا بیٹا خود ہی یہاں آیا تھا.
اصل میں آپ کا برخوردار مہران چند ہفتے پہلے یہاں آیا تھا. میری بیٹی نازنین کے بارے میں اس کی ماں سے بات کرنے.
مہران؟
جی.
اکیلا آیا تھا یوسف صاحب؟
ہاں. میں بھی بہت ناراض ہوا, اسے کہا بھی کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے.
میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. جی اس نے بہت غلط کیا ہے, اسے ہمیں بتانا چاہیے تھا. اس نے بدتمیزی کی ہے اکیلے آ کر.
البتہ کہہ رہا تھا کہ یہاں آیا ہے اجازت لینے تاکہ بعد میں آپ یعنی اپنی فیملی کے ساتھ باقاعدہ طور پر رشتہ مانگنے آئے. لیکن لگتا ہے اس بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا ہے.
کیوں نہیں اصلی صاحب, اپنی ماں سے تو اس نے بات کی تھی. البتہ آپ کے گھر آنا اس کی خود سری تھی.
مجھے بھی اس حرکت پر بہت غصہ آیا.
پہلے تو رشتے کی ہی مخالفت کی
لیکن پھر میں پشیمان ہو گیا. کیا کرے حاجی محسن, آج کل کے جوان ہیں نا, اپنے ہی چلاتے ہیں.
جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. بہرحال پھر بھی میں معذرت چاہتا ہوں. اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم حاضر خدمت ہوں.
جی اچھی بات ہے. جمعرات
تم نے پھر سے کیا کیا؟
اگر آپ مناسب سمجھے تو.
جمعرات بالکل ٹھیک ہے. اچھا
تو انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے, ملیں گے.
خدا حافظ. خدا حافظ انشاءاللہ.
حاجی یوسف کیا کہہ رہے تھے؟
کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے گھر جائیں تمہارے شہزادے کے لیے رشتہ مانگنے.
اچھا نرالا دستور ہے, فون کر کے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ مانگنے آؤ.
نہیں تمہارے بیٹے پہلے وہاں جا چکے ہیں, بات کر چکے ہیں.
ہے مہران؟
ہائے اب میں وہاں جانے کے لیے کیا پہنوں؟
دیکھو لڑکے یہ خیالات سر سے نکال دو کہ میں تمہارے ساتھ رشتہ مانگنے جاؤں گی.
نہیں امی میں ابھی آپ کی طرح حیران رہ گیا, لیکن ابو نے تو طے کر لیا نا. نہیں بہت برا ہو جائے گا.
اچھا طے کر لیا ہے تو تم اکیلے جاؤ, تمہیں تو آتا ہے جانا.
اکرم بیگم میں نے یوسف صاحب سے طے کر لیا ہے.
غلطی کی ہے آپ نے جناب, آپ نے غلطی کی ہے. اس لڑکے کا جیسا دل چاہتا ہے ہمیں نچواتا رہتا ہے.
نہیں امی جان نہیں نہیں یہ نہیں جائیں گے بالکل نہیں. مہران کو خود بھی پتا ہے کہ جو حالات اس کے ساتھ پیش آئے ہیں ایسے میں اس کے لیے یہ کام بالکل مناسب نہیں ہوگا, ہے نا مہران؟ ان حالات میں تم ایسا نہیں کر سکتے, ہے نا؟ رشتہ مانگنا مناسب نہیں ہے نا مہران, تم نہیں جا سکتے.